ईश्वर की चेतना। तो इस तरह और अनेक राक्षसों का वध भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में किया, जिसके विषय में हम चर्चा कल करेंगे। कुछ तीन चार और राक्षस बच गए हैं, उनका वध किया भगवान ने, और उसके पश्चात हम चर्चा करेंगे गोवर्धन लीला, ब्रह्म विमोहन लीला और गोपियों का विशेष गुण, गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति विशेष प्रेम। इसके विषय में हम सभी चर्चा करेंगे कल। बोलिए कृष्ण भगवान की, श्रीला प्रभुपाद की, निताय गौड़ प्रेमानंद, जय श्रीनाथ जी प्रभु की। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी श्रोतागणों का श्रीमद् भागवत पारायण के नवे दिन पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। एक महान आचार्य रघुपति उपाध्याय प्रार्थना करते हैं, श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भारतम अन्ये भजन्तु भवभीतम् यस्यालिंदे परब्रह्मा यस्यालिंदे परब्रह्मा। कहते हैं कि कई लोग श्रुति स्मृति पुराण और महाभारत इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, लेकिन उनके अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है? उनके अध्ययन करने का उद्देश्य है भौतिक जगत के भव सागर को पार करना चाहते हैं। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से घबरा कर वो भगवान के निकट आते हैं, उनकी आराधना करते हैं। लेकिन रघुपति उपाध्याय कहते हैं कि मैं वेद पुराण महाभारत इत्यादि ग्रंथों का इसीलिए अध्ययन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए। अहम इह नंदम वंदे यस्यालिंदे परब्रह्म। वो कहते हैं मैं किसकी आराधना कर रहा हूं? अहम इह नंदम वंदे, मैं नंद महाराज के आंगन के धूल को अपने सर पर लेना चाहता हूं। यस्यालिंदे परब्रह्म, क्योंकि नंद महाराज के आंगन में परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, यस्य आलिंदे परब्रह्म, अपने दो हाथ और दो पैरों में छोटे साधारण बच्चे के समान खेल रहे हैं। अहम इह नंदम वंदे यस्यालिंदे परब्रह्म, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के उस रूप पर ध्यान लगाता हूं जो नंद महाराज के आंगन में एक छोटे नटखट बालक की तरह खेल रहा है। तो संपूर्ण श्रीमद् भागवत में सबसे मुख्य भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं दशम स्कंद में आती हैं, और दशम स्कंद की लीलाओं को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा चाहिए। जैसा कि हमने पहले ही वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का वर्णन होता है प्रथम स्कंद से, भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग अवतारों का वर्णन आता है, भगवान के अलग अलग भक्तों का वर्णन आता है, लेकिन अंततः इनका उद्देश्य है कि दशम स्कंद में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तारित वर्णन। पहले स्कंद में वर्णन आता है, एते चाम सकलः पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। अलग अलग अवतारों के वर्णन करने के पश्चात श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं, एते चामस कलह पुंस, इतने सारे अवतारों का मैंने वर्णन किया है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इन सभी अवतारों में मूलभूत अवतार हैं कृष्ण, अवतारी हैं, अर्थात अन्य सभी अवतार के स्रोत हैं भगवान कृष्ण। इसीलिए श्रील माधवेन्द्रपुरी कहते हैं, कदा द्रक्ष्यामि नंदस्य बालकम नीपमालकम पालकम सर्व सत्वानाम लसत तिलक भालकम। वो समय कब आएगा जब मैं भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुख कमलों का दर्शन ले पाऊंगा। कदा द्रक्ष्यामि नंदस्य, नंद महाराज के पुत्र का मैं दर्शन कब पाऊंगा। जिनके सर पर बहुत सुंदर तिलक है और उनके गले में सुंदर फूलों की माला है। पालकम सर्व सत्वानाम, और वो भगवान श्री कृष्ण जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। पालकम सर्व सत्वानाम लसत तिलक भालकम, और उनके कपोल पर जो तिलक है वो बहुत अच्छी तरह से खिल उठी है, उसे देखकर मैं आकर्षित हो रहा हूँ। इस तरह माधवेंद्रपुरी प्रार्थना कर रहे हैं कि अंततः भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के श्रवण में जो रस है वो भगवान के किसी अन्य अवतार में पाया नहीं जाता। तो इसीलिए महान ऋषि और संतगण भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का श्रवण करने के लिए नित्य आतुर रहते हैं, और इसीलिए सूत गोस्वामी सारे ऋषिगणों को कहते हैं, मुने साधु पृष्टोहम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसीदति। कि हे ऋषिगण, आप लोगों ने तो बहुत ही उत्तम प्रकार का प्रश्न किया है, क्योंकि इन प्रश्नों का संदर्भ भगवान श्री कृष्ण से है। क्यों? क्योंकि यदि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का हम श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे हृदय का शुद्धिकरण होगा। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करेंगे तो आत्मा पूर्ण रूप से तृप्त हो जाती है। आत्मा को तृप्त करने का अन्य दूसरा कोई मार्ग नहीं। इसीलिए श्रीमद् भागवत का श्रवण और कीर्तन बहुत आवश्यक है, और जितने ध्यान से हम श्रीमद् भागवत का श्रवण और कीर्तन करेंगे उतना अधिक हमें लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए प्रथम स्कंद में कहते हैं, तत्र कीर्ते तोर विप्रा विप्रशेर भूरि तेजसा अहम चाधिक मम तत्र निविष्टस्तत अनुग्रहात् सोहम महशावयिष्यामि यथादीतम यथामति। निविष्टस्तत अनुग्रहात्, सूत गोस्वामी कहते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को ये ज्ञान दे रहे थे तब मैं उस सभा में बैठकर इस श्रीमद् भागवत का कथन सुन रहा था, इसका श्रवण कर रहा था। लेकिन श्रवण कैसे कर रहा था? निविष्टस्तत अनुग्रहात्, पूरे ध्यान के साथ मैं ध्यान पूर्वक इस कथा को अपने कर्णों के माध्यम से पीने का प्रयास कर रहा था। अहो निलोके पिएत हरि लीलामृतम वच, तो हरि कथा का पान करना चाहिए अपने कर्णों के माध्यम से, कानों के माध्यम से। तो जितना ध्यान पूर्वक हम हरि कथा का श्रवण करेंगे उतना अधिक लाभ हमें होगा, उतना अधिक हृदय की शुद्धिकरण होगी। तो इसीलिए भागवत में बताया जाता है, भिद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यते सर्व संशया क्षीयते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। जब हम हरि कथा का श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे हृदय का शुद्धिकरण होता है, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि का विनाश होता है। उसके पश्चात सत्व गुण की वृद्धि होती है, और जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तो धीरे 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 हृदय के अंदर जो मिथ्या अहंकार का बहुत भयंकर अड़चन है वो कट जाता है। उसे कहते हैं हृदय की ग्रंथि। हृदय की ग्रंथि तभी कट सकती है जब हरि कथा का ठीक प्रकार से श्रवण और कीर्तन हो। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि को ये काट देता है। ये हृदय की ग्रंथि क्या है? मैं और मेरा, शरीर से आसक्ति। इस ग्रंथि को ये काट देता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया, और जितने भी हमारे संशय हैं इन सभी संशयों को ये तत्पर दूर कर देता है। क्षीयते चास्य कर्माणि, पिछले जन्मों के जितने भी कर्म फल हैं उन सभी से हम मुक्त हो जाते हैं। दृष्ट एवात्मनेश्वरे, जब भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरण कमलों का दर्शन होता है हरि कथा के माध्यम से, तो हृदय के सारे कलमश दूर हो जाते हैं और हम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त कर पाते हैं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत का श्रवण और कीर्तन बहुत आवश्यक है, और नित्य हम पूरे ध्यान के साथ पूरी निष्ठा के साथ यदि भागवत का श्रवण या पठन या अध्ययन करेंगे तो इससे जो लाभ प्राप्त होता है अन्य किसी भी आध्यात्मिक मार्ग से नहीं प्राप्त होता, केवल श्रवण और कीर्तन, क्योंकि कलयुग में यही मार्ग बताया गया है। इसीलिए बताते हैं, श्रृणवत श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदि। श्रृणवत श्रद्धया नित्यं, यदि हम पूर्ण श्रद्धा के साथ रोज श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे और पठन करेंगे और अध्ययन करेंगे, गृणतश्च स्वचेष्टितं, और हम काफी प्रयास करेंगे, स्वचेष्टितं, मानसिक स्तर पर नहीं, मन कहेगा कि अभी मत पढ़ो, अभी मत सुनो, अभी मूड नहीं है, नहीं, स्वचेष्टितम अर्थात मन के अंदर चाहे किसी प्रकार की ध्वनि क्यों न उठे, हम पूरी चेष्टा के साथ श्रीमद् भागवत को पढ़ने का श्रवण करने का प्रयास करेंगे। कालेन न अति दीर्घेन, इस तरह हम श्रवण करेंगे भागवत का तो बहुत ही शीघ्र, न अति दीर्घेन भगवान विशते हृदि, भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनकी कथा का श्रवण और कीर्तन देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत का नित्य श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का श्रवण केवल 7 दिन के लिए या 11 दिन के लिए नहीं, लेकिन नित्यम भागवत सेवया, अर्थात सप्ताह का अर्थ साल के 7 दिन नहीं होने चाहिए, सप्ताह का अर्थ होना चाहिए हफ्ते के 7 दिन। हफ्ते में हर दिन 7 दिन आप श्रीमद् भागवत का श्रवण कीजिए, पठन कीजिए, अध्ययन कीजिए, इसे कहेंगे असली भागवत सप्ताह, अर्थात रविवार से लेकर शनिवार तक रोज श्रीमद् भागवत का श्रवण और अध्ययन। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पर हमने चर्चा आरंभ की कल, और भगवान श्री कृष्ण के सुंदर जन्म का वर्णन हमने कल किया, और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग राक्षसों का जो वध किया उसके विषय में भी हमने चर्चा की। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम उस प्रसंग पर आते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर का वध किया, तो अघासुर के वध करने के पश्चात सारे ग्वाल बाल ब्रज में आते हैं, और ब्रज में आने के पश्चात ब्रजवासियों को 1 साल के बाद अघासुर के वध की लीला के विषय में पता लगता है। इस तरह सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, अघासुर का वध हुआ लेकिन ब्रजवासियों को 1 साल के पश्चात अघासुर के वध के विषय में बताया, और सुखदेव गोस्वामी वर्णन आगे बढ़ाने लगे तो परीक्षित महाराज ने कहा, 1 मिनट ठहरो, रुकिए, ये आपने कौन सी बात कह दी कि अघासुर के वध के पश्चात 1 साल का विलंब क्यों हुआ? ब्रजवासियों को 1 साल तक अघासुर के वध के विषय में ज्ञान क्यों नहीं दिया गया? इस तरह परीक्षित महाराज ने कहा, और उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक सुखदेव गोस्वामी से कहा कि यदि आपकी इच्छा हो और आप सोचते हो कि ये प्रश्न उत्तर देने योग्य है तो कृपा करके आप उत्तर दीजिए। तो प्रश्न करने की भी विधि होती है। तो भागवत प्रवचन के बाद जब प्रश्नोत्तर का समय कभी आता है तो बिना सोचे समझे कोई भी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि इस तरह की एक व्यवस्था है। यदि प्रश्न वास्तव में आवश्यक हो और वो अल्प हो, छोटा हो और उस प्रसंग से संबंधित हो तब पूछना चाहिए, और प्रश्न पूछने की विधि नम्रता पूर्वक होनी चाहिए। और विशेष बात यह है कि सुखदेव गोस्वामी इस तरह का वर्णन क्यों कर रहे थे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी महाराज देखना चाहते थे कि परीक्षित महाराज कितने ध्यान से सुन रहे हैं। क्योंकि बड़ी तेजी से जब प्रवचन चलता रहता है तो कभी कभी पता नहीं लगता प्रसंग कहाँ तक पहुंच गया और बीच में पता नहीं क्या क्या घटनाएं घट गई, कई बार ऐसा होता है। तो वास्तव में देखा जाए सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को जब दशम स्कंद का वर्णन करना आरंभ करते हैं तो कम से कम पांचवा दिन तो हो ही गया होगा। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन वगैरह नौ स्कंदों का वर्णन हुआ होगा और लगभग चौथे या पांचवे दिन दशम स्कंद आरंभ हुआ होगा। तो इतने दिन तक परीक्षित महाराज ने न एक बूंद पानी पिया था, न एक दाना अन्न का खाया था, न एक झपकी ली थी। सोचिए, चार दिन न भोजन, न पानी, न नींद, क्या हाल होगा, हाय हम तो मर जाएंगे। लेकिन परीक्षित महाराज कह रहे थे सुखदेव गोस्वामी को, नमे सव परायन्ति ब्रह्मन अनशनादमि तद अच्युत पीयूषाम यद वाक्याभिविनिसृताम, कि देखिए सुखदेव गोस्वामी महाराज, आपकी कथा आरंभ करने के पहले ही मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, नमे सव परायन्ति ब्रह्मन अनशनादमि, मैं यहाँ अनशन कर रहा हूँ, भोजन नहीं कर रहा हूँ, पानी नहीं पी रहा हूँ, लेकिन कृपा करके मेरी एक विनती है कि आप अपनी कथाओं को संक्षेप में न बताएं, कथा के किसी भाग को आप छोड़िए मत, ये सोच के कि बेचारा राजा भूखा प्यासा होगा, शायद थक गया होगा इसीलिए इसे जल्दी छोड़ देते हैं, ऐसा मत सोचिए। ब्रह्मन अनशनाद अमी, मैं अनशन कर रहा हूं लेकिन फिर भी मुझे चिंता की कोई बात नहीं है। क्यों? तद अच्युतो पीयूषाम, क्योंकि आपके मुख कमलों से भगवान श्री कृष्ण की ऐसी सुंदर लीलाओं का वर्णन हो रहा है, यद वाक्याभि विनिसृताम, जो कि अमृत के सागर के समान है। आपके मुख कमलों से जो वाणी निकल रही है उनकी तुलना की जाए तो केवल अमृत के सागर से हो सकती है। तो यदि अमृत के सागर में कोई लगातार डुबकी लगाए तो भूख और प्यास का प्रश्न कहाँ उठता है, थकावट का प्रश्न कहाँ उठता है। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज, आप कृपा करके अपनी कथा को आगे बढ़ाते रहिए और प्रत्येक कथा को पूरे विस्तार में सुनाइए। ये मत सोचिए कि कितने समय से बेचारा राजा बैठा है। और मजे की बात यह है कि न केवल सुखदेव गोस्वामी महाराज और परीक्षित महाराज अनशन कर रहे थे, वहां उपस्थित जितने भी श्रोतागण थे, जितने ऋषि मुनि थे, सभी अनशन कर रहे थे। किसी ने कुछ खाया पिया नहीं, कोई वहां से उठे नहीं, किसी ने ये नहीं सोचा कि ये चर्चा तो इन दोनों के बीच में हो रही है, हम जरा जंगल में घूमकर आ जाते हैं कुछ देर के लिए। किसी ने ये नहीं सोचा कि अंततः तक्षक तो परीक्षित को मारने आने वाला है, तो हम एक दो दिन जरा आराम करके आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं सोचा। जितने वहां श्रोतागण थे वो भी उसी तल्लीनता के साथ बैठ कर कथा का आनंद ले रहे थे। ऐसी परिस्थिति में सुखदेव गोस्वामी महाराज देखना चाहते थे कि परीक्षित महाराज का ध्यान भटक रहा है कि नहीं, तो उन्होंने इस तरह का वर्णन किया तो सुखदेव गोस्वामी ने तुरंत उनको रोका, ठहरिए रुकिए। तो परीक्षित महाराज के इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी महाराज कहने लगे, बहुत बढ़िया, वरियानेशते प्रश्न कृतो लोक नृपम हित, आपने जो प्रश्न किया है बहुत ही उचित है। उचित क्यों है? क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि आप ध्यान पूर्वक कृष्ण कथा का श्रवण कर रहे हो। मैं दस देखना चाहता था कि लगातार कथा सुनने के बाद आप थक गए हो कि नहीं, लेकिन आप महाभागवत हो क्योंकि लगातार कथा सुनते हुए भी आप थक नहीं रहे हो, आपका ध्यान भटक नहीं रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आप भगवान के महाभागवत हैं। क्यों? क्योंकि जो नवदा भक्त होता है, कनिष्ठ भक्त होता है, हरि कथा सुनते सुनते उसका ध्यान भटक जाता है, कभी झपकी लग जाती है, कभी मन यहाँ वहाँ विचलित हो जाता है, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनका हरि कथा से ध्यान एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं होता। तो परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और वो कहने लगे, बहुत बढ़िया, अब मैं आपको ये रहस्य बताऊंगा कि एक साल तक उन्होंने क्या किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि इतनी देर तक हरि कथा सुनना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी आप इन कथाओं में इतना विश्वास और रुचि रखते हो, इसीलिए आप यहाँ बैठकर इन कथाओं का आनंद ले रहे हो। प्रथम स्कंद में वर्णन आता है कि नैमिषारण्य के ऋषिगण श्रील सूत गोस्वामी से कहते हैं, वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यथ शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। कि हे सूत गोस्वामी महाराज, आप हरि कथा का वर्णन करते रहें करते रहें, रुकिए मत, हम इन कथाओं का श्रवण करके अभी भी पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हुए हैं। उत्तम श्लोक विक्रमे, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। यत शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के श्रवण में हर कदम पर, हर पद पर, पदे पदे, हर पद पर हमें नया नया स्वाद प्राप्त होता है, नए नए रसों का हम अनुभव कर रहे हैं। हरि कथा के श्रवण में चिंता मत कीजिए, आप हरि कथा कहते रहिए, सुनाते रहिए। तो तुकाराम महाराज के जीवन में एक कथा आती है कि एक बार, ये सत्य घटना है कि तुकाराम महाराज बैठकर हरि कथा कर रहे थे, तो हरि कथा करते करते तुकाराम महाराज तो इतने बड़े भक्त थे कि पूरी तरह लीन हो गए। एक मंदिर में बैठकर कथा चल रही थी, मंदिर खचाखच श्रोतागणों से भरा था, कथा चलती रही चलती रही चलती रही, इतनी रात हो रही थी कि तुकाराम महाराज को कुछ होश नहीं था कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे करके एक एक व्यक्ति उठकर जाने लगे, कुछ लोग वहीं पर लेटकर सोने लगे, तो कुछ देर के बाद उठकर वो भी वहां से जाने लगे। देखते देखते पूरा हॉल खाली हो गया। तुकाराम महाराज को कुछ पता नहीं लगा कि कौन है कौन नहीं है, पूरी तरह लीन थे वो कथा में और कीर्तन में। और जब सारी कथा समाप्त हुई तो रात के 2:30 बज गए थे सुबह के अर्थात। तो तुकाराम महाराज ने देखा कि उनके सामने केवल एक व्यक्ति बैठकर पूरी तल्लीनता के साथ श्रवण कर रहा है। तो तुकाराम महाराज उन पर बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे, आप महान हो, इतने सारे लोग कथा के आरंभ में बैठकर सुन रहे थे लेकिन सभी उठकर चले गए, लेकिन आप ही एक श्रद्धावान भक्त हो जो बैठकर कथा का आनंद ले रहे हो। तो उस भक्त ने कहा, नहीं महाराज, ऐसी कोई गलत फहमी मत रखो अपने हृदय में, वास्तव में असली बात यह है कि जिस कंबल पर बैठकर आप कथा कर रहे हो वो कंबल मेरी है, इसीलिए उस कंबल को लेने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो वास्तव में देखा जाए तो हरि कथा बहुत समय तक सुनना बड़ा कठिन कार्य है। तो इसीलिए बीच बीच में हम कीर्तन करने का भी प्रयास करते हैं। तो सोचिए, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम्, बैठकर बस सुनो और कुछ नहीं। यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं लिया जा रहा, यहाँ पर कोई वाइवा एग्जाम नहीं हो रहा कि बीच बीच में प्रश्न किया जा रहा है, क्यों भाई अभी पिछले सेंटेंस में क्या बताया बताओ, ऐसा बोलेंगे तो फिर पता नहीं शायद आधे लोग ना आए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, बस बैठकर सुनो, कितना आसान है। लेकिन क्योंकि कलयुग है, हरि कथा श्रवण करना भी बहुत कठिन काम है। तो कुछ समय तक भी कोई व्यक्ति हरि कथा का श्रवण करे वो बहुत महान है। तो इसीलिए परीक्षित महाराज पर सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और वो कहने लगे कि अघासुर के वध के बाद ब्रह्मा जी सारे ग्वाल वालों के साथ यमुना नदी के निकट गए और कहने लगे कि बड़ी भूख लगी है। गोपाल कहने लगे कि देखो, हम अघासुर को वध करते करते इतने लीन हो गए कि हमने देखा नहीं कि प्रसाद का समय निकट आ गया, तो चलिए हम सब मिलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो सारे ग्वाल वालों ने कहा हाँ हाँ चलो, बड़ा अच्छा विचार है गोपाल, चलो बैठकर हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो सब ने अपनी अपनी पोटली खोल ली और आराम से यमुना के किनारे बैठ गए। सभी ग्वाल बाल अपने घर से अलग अलग व्यंजन लेके आए थे और उन सभी ने अपनी अपनी पोटली को बाहर निकाला और वहां जो कुछ भी उपलब्ध था उस पर अपने प्रसाद को रखकर खाने लगे। कोई पत्तों पर रखकर खाने लगे, कोई चट्टानों पर रखकर खाने लगे, कोई फूलों की कलियों पर रखकर प्रसाद ग्रहण करने लगे। गोपाल सबके बीच में बैठे थे और सारे ग्वाल बाल उनकी चारों तरफ बैठे थे। प्रतीत हो रहा था मानो कमल का कोष हो और आजू बाजू कमल के जितने भी दूसरे अंग हैं वो गोपाल को घेरे हुए हैं। तो उस समय गोपाल सभी ग्वाल बालों के साथ बड़े आनंद के साथ ठहाका लगाते हुए हंस खेल कर बातें कर रहे थे। सभी ग्वाल बाल बड़े आनंद में थे क्योंकि वो गोपाल को अपने घर से लाया हुआ प्रसाद भोजन देना चाहते थे। तो कोई ग्वाल बाल अपने हाथ में कोई लड्डू लेता, उसे चखता और कहता मेरी माँ ने लड्डू बहुत अच्छा बनाया है। तो गोपाल कहते मुझे भी दो, मुझे भी दो। तो वो अपना काटा हुआ लड्डू गोपाल को देते और उसके पश्चात कोई दूसरा कहता कि देखो ये पराठा कितना अच्छा है। तो गोपाल कहते मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। तो उसे देते। तो सारे ग्वाल बाल एक दूसरे को अपने घर से लाया हुआ भोजन दे रहे थे और आनंद कर रहे थे और गोपाल बीच बीच में ग्वाल बालों के साथ मजाक करते थे और इसे सुनकर सब जोर जोर से ठहाका लगाते और इस लीला को ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे कि ये भगवान कृष्ण गोपाल ग्वाल बाल के रूप में अपने सभी मित्रों के साथ कैसी लीलाएं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तभी उस समय गोपाल ने पूछा कि हमारे बीच मधुमंगल नहीं दिख रहा, मधुमंगल कहाँ गया। तो सारे ग्वाल बालों ने कहा चलो हम मधुमंगल को ढूंढते हैं। तो पता लगा कि उस दिन मधुमंगल घर से कुछ छाछ लेके आया था और क्योंकि उसने घर से छाछ लाया था वो बहुत शर्मा रहा था कि भगवान कृष्ण के लिए गोपाल के लिए सारे ग्वाल बाल इतने सुंदर सुंदर व्यंजन लेके आए हैं और मैं सादा सा छाछ गोपाल को खिलाऊंगा ये अच्छा नहीं लगता। तो मधुमंगल छाछ की मटकी को लेके झाड़ियों के पीछे छुपा था। तो गोपाल ढूंढते ढूंढते गए और पीछे से जाकर मधुमंगल को पकड़ा। हे मधुमंगल, यहाँ क्यों छुपे हो, कहाँ है तुम्हारे घर का भोजन। तो मधुमंगल घबरा गए, बोले अभी गोपाल देख लेंगे तो फिर बड़े शर्म की बात होगी, बड़ी लज्जा आ रही है मुझे। ऐसा सोचकर मधुमंगल ने उस मटके की छाछ को अपने मुंह में डाल लिया उन्होंने चाहा कि मटके में जितना छास है सबको निगल लूं, लेकिन एक ही झटके में पूरा नहीं पी सके और उनका मुंह पूरा छास से भर गया और ऐसा हो गया। और गोपाल ने देखा, मधुमंगल ये मुंह में क्या है? मधुमंगल का तो गोपाल ने कहा, अच्छा तुमको छुपा रहे हो? और अपनी दोनों मुट्ठी ली गोपाल ने और दोनों मुट्ठी लेकर मधुमंगल के गाल को छपाक ऐसे मारा और अंदर जो छास था वो छू बाहर निकला और सीधा गोपाल के मुंह में आ गया और गोपाल उसको चाटने लगे और ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, ये क्या है? ये भगवान है? ये पूर्ण पुरुषोत्तम है? ऐसी लीला कर रहे हैं? छी छी छी, ये अवश्य ही कोई साधारण व्यक्ति प्रतीत होते हैं। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने निश्चय किया कि मैं इनकी परीक्षा लूंगा। और ऐसा कह के ब्रह्मा जी ने ग्वालों को वहां से गायब कर दिया। गोपाल ने देखा कि उनके सारे ग्वाल बाल मित्र परेशान है, सब देख रहे हैं कि गाय कहाँ गए, गाय तो दिखते नहीं। सब कहने के, चलो प्रसाद को छोड़ो, अभी हम गायों को लेके आते हैं, नहीं तो वृंदावन में कैसे जाएंगे हम, हमारे माता पिता हमें डांटेंगे। तो गोपाल कहने लगे, नहीं नहीं चिंता मत करो, आप यहीं बैठकर प्रसाद ग्रहण करो, मैं जाता हूं और मैं देखूंगा, आप निश्चिंत रहो, मैं गायों को लेके आऊंगा, आप चिंता क्यों करते हो। तो गोपाल क्योंकि भक्त वत्सल है, अपने ग्वाल बालों को आश्वासन देकर स्वयं दूर जंगल के अंदर चले गए देखने के लिए कि गाय कहां पर है। लेकिन अंदर बहुत ढूंढने पर भी उन्हें गाय नहीं मिले। तो गोपाल वापस लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि ग्वाल बाल भी गायब हैं, उनके सारे मित्र भी गायब हैं। तो उस समय गोपाल कुछ परेशान से हो गए और चकित हो गए, चकित रह गए, समझ में नहीं आ रहे कि क्या हो गया और भ्रमित हो गए। तो प्रश्न उठता है कि कृष्ण भला कैसे भ्रमित हो सकते हैं? कृष्ण यदि भ्रमित होते हैं तो कृष्ण क्या पूर्ण पुरुषोत्तम कहलाएंगे? लेकिन कृष्ण भ्रमित क्यों होते हैं? केवल उस लीला के रस को बनाए रखने के लिए भगवान भ्रमित होते हैं। क्योंकि भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करके मुझे भ्रमित करने का प्रयास करता है, चलो ब्रह्मा जी को भी थोड़ा आनंद देते हैं कुछ समय के लिए। यदि तुरंत मैंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया तो ब्रह्मा जी अपनी लीला को पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जब लीलाएं करते हैं तो उन लीलाओं के माध्यम से वो अनेक लोगों को संतुष्ट करते हैं, अनेक भक्तों की इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण एक नाटक के पात्र की तरह कार्य कर रहे थे। जैसे नाटक होता है तो नाटक में प्रत्येक पात्र ऊपर मंच पर आकर अलग अलग प्रकार से रोल अदा करता है, जो उसको रोल दिया जाता है डायरेक्टर के द्वारा वो करता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वास्तव में उसके जीवन में वही सारी घटना घट रही है। वो जानता है कि मैं कौन हूं, लेकिन यहां नाटक चल रहा है और जब तक नाटक चल रहा है तब तक सब ठीक है। लेकिन जैसे ही नाटक समाप्त होगा, बाहर निकलने के बाद तुरंत वो पुराने जैसा हो जाएगा। हो सकता है नाटक में वो कोई राजा बने और राजा के रोल में वो दूसरों के ऊपर अनुशासन करे, लेकिन जैसे ही नाटक समाप्त हो मंच से नीचे उतरे तो अपने मित्रों को कहने सकता है, चलो मेरे प्रति समर्पित हो जाओ। तो मित्र एक झांपड़ देंगे, बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, नाटक समाप्त हुआ, अब आप भी नीचे उतर जाओ। नाटक जब तक चल रहा था तब तक नाटक के सीन में ये सारी बातें ठीक थी। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी एक नाटक के पात्र के समान सबके सामने, विशेषकर ब्रह्मा जी के सामने अपने भ्रमित अवस्था को प्रदर्शित कर रहे थे। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, और गोपाल ने अपने आप को सभी ग्वाल बालों और गायों के रूप में अपने ही आप को विकसित कर दिया। उनके ही अंश ग्वाल बाल और गाय के रूप में आ गए। जितने गायों को ब्रह्मा जी ने अपहरण किया था वो सारे गाय यथारूप वहां उपस्थित थे। जैसे प्रत्येक गाय की सींग थी वैसे ही भगवान ने अपने आप को उस रूप में प्रस्तुत किया। जैसे अनेकानेक ग्वाल बाल थे वो सारे ग्वाल बाल उसी रूप में वहां उपस्थित थे भगवान श्री कृष्ण की योग माया की शक्ति से। जैसे ग्वाल बालों के वस्त्र थे वैसे ही कृष्ण ने वस्त्रों को धारण किया। जैसे ग्वाल बालों के अलग अलग प्रकार के मटके थे वैसे ही उनके भी मटके थे। जिस अवस्था में उन्होंने प्रसाद को वहां पर छोड़ा था उसी अवस्था में वो सारे प्रसाद की पोटलियां वहां पर उपस्थित थीं। और भगवान श्री कृष्ण उस समय जब ब्रह्मा जी ने देखा अपने हाथ में दही चावल लिए थे और उंगलियों के बीच में अलग अलग फल को धारण किया था, तो वो अपने हाथ में दही चावल को चाट रहे थे और बीच बीच में फल भी खा रहे थे। तो इस अवस्था में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा था। आज प्रसाद में कौन सा चावल है? दही चावल। तो उस लीला में श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी ने दही चावल खाते हुए देखा और उसके पश्चात भगवान सारे ग्वाल बालों और गायों को लेकर सीधे व्रज में गए और वहां उनके जितने माता पिता थे उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था अपने ही पुत्रों के प्रति वही प्रेम विकसित होने लगा। तो वो सोचने लगे कि अचानक हम अपने पुत्रों के प्रति इतना प्रेम अनुभव क्यों कर रहे हैं, वो समझ नहीं सके। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पुत्रों को इस तरह आलिंगन किया और ऐसे प्रेम की अनुभूति हो रही थी जैसे कृष्ण से ही। और जितने गाय थे वो गाय अपने बछड़ों के प्रति इतना प्रेम प्रदर्शित कर रहे थे जैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम था। तो कहा जाता है कि सारी गोपियों ने और ब्रजवासियों ने ऐसी प्रार्थना की थी कि हम कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में चाहते हैं, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी करने का प्रयास किया। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को अलग अलग रूपों में प्रदर्शित किया और उसी रूप में एक साल वो रोज गायों को लेकर जंगल में जाते चराते और घास चराने के पश्चात वापस व्रज को लौटते थे। एक साल तक ये लीला चलती रही। एक साल की अवधि लगभग समाप्त होने वाली थी तो उस समय बलराम जी ने एक दिन एक अद्भुत बात देखी। वो ये कि गोवर्धन पर्वत के ऊपर कुछ गाय खड़े थे और उन गायों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे अपने बछड़ों को देखा और अपने बछड़ों को जो कि भगवान श्री कृष्ण के ही रूप थे उनको देखकर उनके हृदय में ऐसे प्रेम का विकास हुआ कि वो घास को चरने को छोड़कर भागे भागे नीचे आए और इतनी तेजी से वो भागते हुए आए कि बीच में जितने भी ग्वाल बाल थे वो उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे लेकिन वो रोक नहीं सके। उनकी पूंछें ऊपर उठी हुई थी, कान बिल्कुल ऊपर उठे हुए थे और पूरे उत्साह के साथ वो अपने बछड़ों के निकट भागे आ रहे थे। तो ये देखकर बलराम जी आश्चर्यचकित रह गए कि इन गायों के अंदर इतना प्रेम कहां से आया, ये तो ऐसे प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं मानो भगवान कृष्ण के प्रति, और मैं भी इन बछड़ों और ग्वाल बालों के प्रति इतना आकर्षित हो रहा हूँ जैसे ये मेरे प्रभु कृष्ण हो। तो इसके पीछे रहस्य क्या हो सकता है? अवश्य ही ये स्वयं कृष्ण के ही विस्तारित रूप होंगे। और ऐसा सोचकर बलराम जी ने कृष्ण से प्रश्न किया कि देखो गोपाल, स्पष्ट बताओ कि ये सारे रूप कौन हैं? तो कृष्ण ने सारी बात बता दी कि हाँ, वास्तव में ये सारे रूप मेरे ही हैं, और ये सारे रूप मैंने धारण क्यों किए, ये रहस्य भी भगवान ने बताया। और कृष्ण की बात को सुनकर बलराम जी सब कुछ समझ गए। और तब एक वर्ष की अवधि पूरी हुई, और एक वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात ब्रह्मा जी ने सोचा कि अभी मैं देखता हूं कि व्रज में कैसी लीला हो रही है, व्रजवासियों के यहाँ किस तरह का उत्पात मचा हुआ है, मैं जरा देखता हूँ। ये सोचकर ब्रह्मा जी देखे नीचे, तभी उन्होंने देखा कि सारे ग्वाल बाल और सारे गाय उसी तरह ब्रज में घास चर रहे हैं। ग्वाल बाल गायों को संभाल रहे हैं, कृष्ण के साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, उसी अवस्था में जो पहले एक साल पहले देखा था। तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए कि यह कैसे संभव है। ब्रह्मा जी वापस लौटकर अपने धाम में देखा, सारे ग्वाल बाल और सारे गाय वहीं पर थे। ब्रह्मा जी फिर व्रज में देखे, जब व्रज में देखे तो देखा कि सारे ग्वाल बाल और गाय कृष्ण के साथ फिर वही लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी फिर अपने धाम में देखते हैं, फिर यहाँ पर सब उपस्थित हैं। कभी यहाँ देखते, वहां देखते, वहां देखते, यहाँ देखते, लेकिन अंततः वो पूरी तरह भ्रमित हो गए। ये कैसे संभव है कि भगवान श्री कृष्ण अपने सारे ग्वाल बाल और गायों के साथ ब्रज में उपस्थित हैं? इसके पीछे रहस्य क्या है? ये सोचकर ब्रह्मा जी चकरा गए। ब्रह्मा जी के चार सर थे, लेकिन चार सर को रख कर भी वो अपनी सारी बुद्धि के साथ भगवान की इस लीला को समझ नहीं सके। और तभी कृष्ण ने सोचा कि चलो मैं ब्रह्मा जी की पीड़ा को दूर करता हूँ। और ऐसा सोचकर कृष्ण ने अपने आप को अलग अलग विष्णु रूपों में प्रस्तुत किया। तो जितने वहां पर गाय थे वो सभी विष्णु के रूप में आ गए। चतुर्भुज विष्णु, शंख, चक्र, गदा और पद्म उन्होंने अपने हस्तों में धारण किया। और जितने गाय थे वो भी विष्णु रूप धारण करने लगे, और भगवान कृष्ण ने अपने आप को भी विष्णु के रूप में प्रदर्शित किया। तो जब ब्रह्मा जी ने ये देखा तो ब्रह्मा जी ये देखकर समझ गए कि वास्तव में ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये तो स्वयं कृष्ण हैं, साक्षात भगवान, मेरे स्वामी। मैंने अपने ही स्वामी के साथ छल करने का प्रयास किया, मैंने इतना बड़ा अपराध किया अपने स्वामी के प्रति। ये अपराध तो इतना महान है कि शायद ये मुझे क्षमा न करें। ये सोचकर ब्रह्मा जी सीधे ब्रज में आए, और कृष्ण उस समय तक अपने ग्वाल बाल का रूप धारण कर लिए थे और अपने हाथ में मक्खन और फल को लेकर खा रहे थे, चाट रहे थे। तो गोपाल के इस रूप को देखकर, भगवान श्री कृष्ण को देखकर ब्रह्मा जी पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए, और सीधे आकर भगवान कृष्ण के सामने उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्मा जी जो इतने महान 14 लोकों का निर्माण करते हैं, 14 लोकों में ब्रह्मा जी के समान किसी की बुद्धि नहीं है, ब्रह्मा जी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन अपनी संपूर्ण बुद्धि को लेकर भी वो कृष्ण की इस लीला को समझ नहीं सके। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी के इस लीला को देखकर हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के साथ छल करने का प्रयास करे तो वो अंततः असफल और असमर्थ रहेगा। ब्रह्मा जी के चार सर हैं और इन चार सरों में इतनी बुद्धि है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार एक व्यक्ति ने इच्छा की, उनके सामने एक देवता है और वर मांगा कि क्या चाहिए। वर मांगा कि मुझे ब्रह्मा जी के अंदर जितना ज्ञान है वो चाहिए, ऐसा वर मांगा। तो तुरंत उनकी बुद्धि में, ब्रह्मा जी के बुद्धि में जितना ज्ञान था वो जाने लगा और उनका सर फट गया, क्योंकि उनके सर के अंदर ब्रह्मा जी का सारा ज्ञान नहीं आ सकता था। तो सोचिए ब्रह्मा जी की कितनी बुद्धि है, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहते हैं ब्रह्म विमोहन लीला के विषय में, एवं सम्मोहयन विष्णुं विमोहं विश्वमोहनं स्वयैव मायाजोऽपि स स्वयमेव विमोहिता। एवं सम्मोहयन विष्णुं विमोहं विश्वमोहनं, कि ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को मोहित करने का प्रयास किया। एवं सम्मोहनम विष्णुम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ ही छल करने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ वो ये नहीं जानते थे।